हरे कृष्णा, दिस क्लास ऑन भगवद गीता चैप्टर 12 श्लोक नंबर 13 एंड 14 गिवन इन सेक्टर 23 सेंटर फरीदाबाद ऑन 22nd September 2016 by myself Prashant Mukund Das.
Jayal Mora Jaya Radha Nath Hariye Dayal Mora Jaya Radha Nath Hariye Dayal Mora Jaya Radha Nath Baro 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 Lao Nija Sat Baro Baro बारो लहने जसा हरे दयाल मोरा जय राधा नाथ हरे दयाल मोरा जय राधा नाथ मोरा मोरा भोरो भोरो ए भरसा बहुयोनी भ्रामी नाथ लयनु शरण बहुयोनी भ्रमिनाथ लयनु शरण निज गुणे कृपा करो अधम तरण निज गुणे कृपा करो अधम तरण जगत कारण तुम्हें जगत जीवन 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 तुम्हा छोड़ा के हो नाई हे राधा रमन तुम्हा छाड़ा के हो नाई हे राधा रमन भुवन मंगल तुम्हें भुवनेर पते भुवन मंगल तुम्हें भुवनेर पते भुवन मंगल तुम्हें भुवनेर पते तुम्हें उपचेला नाथ की भगते तुम्हें उपचेला की भगत भविया देखिनु ऐ जगत मझारे भविया देखिनु ऐ जगत मझारे तुमा बिना केह नाही हे दासे उधारे तुमा बिना नहीं हे दासे उधारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद Prabhupada Jayo, Srila Prabhupada Jayo, Prabhupada Jayo, Jayo Prabhupada Jayo, Prabhupada Jayo, Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura
श्री राधा गोविंद भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय पतित पावन श्रीला प्रभुपाद की जय निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्णा ओम ज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नकान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग अब 12वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। तो भगवद गीता में 18 अध्यायों में से महत्वपूर्ण अध्याय है 9वां अध्याय। वैसे तो हर एक श्लोक हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पर इन 18 अध्यायों में से जो ये 12वां अध्याय है इसका नाम है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेकों प्रकार के योग सिखाए भगवद गीता में, ध्यान योग, अज्ञान योग, कर्म योग और एक भक्ति योग। तो भक्ति योग अगर हम समझना चाहते हैं कि भक्ति योग क्या है, तो उसके लिए 12वां अध्याय सबसे उत्तम अध्याय है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, योग संस्कृत शब्द में योग का अर्थ है जोड़ना, और भक्ति योग का मतलब है भक्तिमय कार्य करके भगवान से अपने आप को जोड़ना। जैसे आज संसार में योगा बहुत चल रहा है, रामदेव जी का योगा और बहुत सारे अनेकों योगा गुरुज पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो उन गुरुज का योगा का मतलब है शारीरिक योगा, पर सच्चाई ये है योग का शब्द का मतलब है भगवान से जोड़ना। अगर वो कर्म करके जोड़ा जाए तो कर्म योग, ध्यान करके भगवान से जोड़ा जाए तो ध्यान योग, और अगर ज्ञान प्राप्त करके भगवान से जुड़ा जाए तो ज्ञान योग, और अगर भक्तिमय कार्य करके भगवान से जुड़ा जाए तो भक्ति योग। तो इस भक्ति योग को भगवान ने बताया है इस अध्याय में, और इस अध्याय में सबसे कम श्लोक है, जानते हैं सबसे कम, देखिए इसके अंदर 20 श्लोकों में इस अध्याय को संपूर्ण किया गया है। और आज का दिन बड़ा उत्तम दिन है, क्यों? क्योंकि आज आज हम जिस श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान ने इस श्लोक से लेकर और 20वें श्लोक तक, 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक 8 श्लोकों में यह वर्णन किया है कि इस संसार में सबसे प्रिय मेरा कौन है। तो ये आज 13वां श्लोक, मतलब अगर देखें तो भगवद गीता में भगवान ने अनेकों प्रकार का ज्ञान प्रदान किया, लेकिन कौन मेरा प्रिय है ये बात अभी 13वें श्लोक में बता रहे हैं। जैसे अब विवाह होता है और विवाह होने के बाद में कभी पत्नी को व्यक्ति अब सब पंडाल में जहां शादी हो रही है वहां नहीं कहता मैं तुम्हें प्रेम करता हूं या मुझे क्या चीज पसंद है, वो कब बोलता है? जब दोनों अकेले होते हैं, और तब वो बोलता है कि ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है ये बात, और भगवान ने अर्जुन को बड़ी ही सरलता से ये ज्ञान हमारे लिए प्रदान किया। तो इसमें बता रहे हैं, अब हम श्लोक पर चर्चा करेंगे भक्ति योग का, कि भगवान जो है वो किसको अपना प्रिय मानते हैं। तो आगे के श्लोकों में और भी चर्चा करेंगे, पर आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। आदृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकारो समा दुखा सुख शमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मै अर्पितं मनो बुद्धियो मदभक्ते सा मे प्रिया। तो भगवान ने यहां कहा स मे प्रिय। तो ये हर एक 13 श्लोक से लेकर और 20वें श्लोक तक आपको सुनने को मिलेगा स मे प्रिय स मे प्रिय स मे प्रिय। सो आई लाइक हिम आई लाइक हिम आई लाइक हिम, मुझे ये पसंद है ये पसंद है। तो वो स्पेशल मेन्यू भगवान ने, जैसे जाते हैं ना होटल में वो बोलते हैं ये मेरा स्पेशल मेन्यू है मुझे ये पसंद है ये पसंद है ये ले आओ, तो वो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ये पसंद है मुझे। तो इस श्लोक में उन्होंने कहा, तो अभी हम लोग इस श्लोक का अनुवाद को पढ़ सकते हैं साथ में और फिर हम इस पे समझने का प्रयास करें। तो सब लोग साथ में बोल सकते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने यहां बता दिया कि सबसे प्रिय मुझे कौन है, अत्यंत प्रिय। तो बहुत ही समझदारी से हमें श्लोक को समझना चाहिए अपने सारे कर्ण रंध्रों को खोल करके। तो इसमें यहाँ जो चर्चा करी है क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी बताई गई हैं, एक एक भक्त के गुण बताए गए हैं यहाँ पर। तो पहला है अदृष्टा। अदृष्टा का मतलब है ईर्ष्या विहीन,
मतलब उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या विहीन जो व्यक्ति है उसको भगवान ने कहा अदृष्टा। तो ईर्ष्या के बारे में चर्चा करते हुए कई बार इस पे हम चर्चा किए हैं कि चार प्रकार की ईर्ष्याओं का वर्णन भागवतम में आता है। एक ईर्ष्या है जिसे कहते हैं द्वेष। क्या कहते हैं? सब लोग साथ में बोलिए, द्वेष। द्वेष, द्वेष को अगर अंग्रेजी शब्द में समझें तो उसे बोलते हैं हेट्रेड, नफरत करना, हेट्रेड। तो जिस व्यक्ति का द्वेष होगा, अब हमें कैसे पता चलेगा? हम एक ही शब्द से सभी द्वेषों को नाप तोल लेते हैं। ये मुझसे बहुत जलता है, ये मुझसे ईर्ष्या करता है, ये मुझसे द्वेष करता है, ये सभी शब्द अपने आप में अलग अलग है, सब अलग अलग है। तो द्वेष का मतलब है जब कोई व्यक्ति आपको या आप किसी व्यक्ति को इग्नोर करते हैं, उसको कहते हैं हट हट, इससे बात ही नहीं करनी है। जब उससे साइड हो जाते हैं, कट जाते हैं उसको देख करके, तो उस शब्द को कहते हैं ये मुझसे द्वेष करता है। और दूसरा प्रकार का वर्णन है खला। खला, खला को अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव हेट्रेड। एक्टिव, ये हेट्रेड अब बढ़ गई है, खला पे आ गई है। तो खला जो है इसके अंदर व्यक्ति द्वेष तो करता ही है, साथ में दूसरे व्यक्ति का अनहित भी चाहता है। हित नहीं चाहता, अनहित, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, इसको कैसे भी करके नुकसान पहुंच जाए, उसको कहते हैं एक्टिव हेट्रेड। और फिर आता है असूया। असूया, असूया में व्यक्ति उस व्यक्ति से जिससे वो नफरत करता है उसके समान स्तर पर अपने आप को पहुंचाना चाहता है। तो अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति अगर किसी के बारे में गुणगान गा रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि सच्चाई में ये व्यक्ति वो स्थान प्राप्त करना चाह रहा है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसी की तारीफ करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। और अगर उसे सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो ये असूया होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोले कि अरे वो देखो क्या क्या छक्का लगाता है, क्रिकेट खेलकर ही व्यक्ति ने कुछ भी नहीं, पढ़ा लिखा कुछ, टेंथ पास, और छक्के मार मार के आज फरारी गाड़ी खरीद ली, क्या बात है। इसका मतलब आप उस व्यक्ति से क्या है, असूया है, उसका स्थान प्राप्त करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं यार मैं भी दसवीं से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, काश मुझे मौका मिल जाए छक्के लगाने का तो मैं भी आज फरारी खरीद लूं। हाँ, तो ये एक असूया सूक्ष्म रूप का द्वेष हमारे अंदर छुपा हुआ है। और फिर आगे आता है चौथे प्रकार का द्वेष, जिसे कहते हैं मत्सर्या। क्या कहते हैं? मत्सर्या। आपने कई बार सुना है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्या, छह प्रकार के अनर्थ। तो मत्सर्या, मत्सर्या में व्यक्ति खाली उस व्यक्ति का स्थान प्राप्त नहीं करना चाहता, उससे भी आगे निकलना चाहता है। हाँ, उससे भी आगे निकलना चाहता है, उसे कहते हैं मत्सर्या। आपके भाई का दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, अरे कुछ नहीं है, उनके पास प्रोडक्ट ही कहाँ है अवेलेबल है, हमारे प्रोडक्ट तो कहीं गुना उनसे ज्यादा है, ये बातें लोग बोलते हैं। इससे पता चल जाना चाहिए इनका और इनके भाई के बीच में मत्सर्या है। तो अब आप आसानी से जज कर पाएंगे किस व्यक्ति के बीच में किस प्रकार की ईर्ष्याएं चल रही हैं। जैसे मत्सर्या का एक सुंदर कथा आती है। एक व्यक्ति था, उसने भगवान की बड़ी प्रार्थना करी। क्या बोला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसने बहुत प्रार्थना करी भगवान की, तो भगवान इतने प्रसन्न हुए उससे कि भगवान प्रकट हो गए और बोले वाह भक्त, कलयुग केवल नाम आधारा को तूने कितने ही सावधानी पूर्वक जपा है कि मैं इतना प्रसन्न हूं, जो मांगेगा आज देने के लिए तैयार हूं। भक्त खुश, ये और क्या चाहिए। हमारे पास अगर भगवान आए, सेक्टर 23 के भक्तों मैं तुमसे प्रसन्न हूं, यहां प्रकट हो जाए फोटो से बाहर, हाँ बोलो क्या चाहते हो, तो कहेंगे दो मिनट दीजिए जरा, पति बोलेगा पत्नी से डिस्कस कर लूं, पत्नी बोलेगी पति से डिस्कस कर लूं, और फिर क्या लेके आएंगे, एक लिस्ट लेके आएंगे लंबी सी। तो वैसे ही उस व्यक्ति ने कहा दो मिनट, टू मिनट टाइम, आप जब तक मैगी खाइए टू मिनट, उतनी देर में मैं क्या करता हूँ, प्लान बना के आता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। हाँ तो भगवान ने कहा ठीक है। अब वो प्लान बना के जब आया तो भगवान ने कहा ओ भक्त एक बात तो बताना भूल ही गया। क्या? कहा कि देखो जितना तुमको दूंगा ना उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अरे ये कंडीशन तो आपने बताई नहीं। कहा भाई आजकल का जमाना ऐसा है टर्म्स एंड कंडीशन तो नीचे लिखी जाती है छोटे सूक्ष्म रूप में और ऊपर से टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई जाती है। ब्रांडिंग में तो मैंने कहा जब तुम्हारी इच्छा है पूरी करूंगा पर नीचे है टर्म्स एंड कंडीशन कि जितना तुम्हें दूंगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। व्यक्ति बोला अच्छा अरे जिसके लिए इतनी तपस्या करी पड़ोसी से एक खलह था या मत्सर्य था जिसको जलाने के लिए मैंने मांगा आज इतनी प्रार्थना करी क्योंकि मुझे अपनी शक्ति से तो प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने सोचा सर्वशक्तिमान कृष्ण की प्रार्थना करूं वो प्रसन्न हो गए तो मिल जाएगा और फिर पड़ोसी को जलाऊंगा। लेकिन आपने तो पूरा पड़ला ही चेंज कर दिया खेल ही बदल दिया पड़ोसी को दुगना दोगे। कहा ठीक है भगवान पर आप अपनी बात से नटना मत जब मैं मांगू तो देना पड़ेगा। कहा दूंगा और मेरे पड़ोसी को दुगना देना पड़ेगा। कहा दूंगा बोलो क्या चाहिए। कहा मेरी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी जलने के लायक नहीं रहेगा। ऑल्टो खड़ी करके कहूंगा देख मैंने मर्सिडीज खरीदी देखेगा कैसे जलता रहेगा। तो मत्सर्य की भावना जिन भक्तियों में है वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा अदृष्टा ईर्षा रहित ईर्षा विहीन होना चाहिए। और सर्वभूतानाम सभी जीवात्माओं में भूत नाम का मतलब है सभी जीवात्माओं में ये नहीं कि जो भक्त भक्त है ना वैष्णव के अंदर हमारा बड़ा प्रेम है प्रभु जी वैष्णवों के अलावा हमारा किसी से व्यवहार बड़ा ही दुष्कर होता है। पति भक्त है या पत्नी भक्त है तो जब मंदिर जाएंगे हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी कैसे हैं और घर आए दिखता नहीं है तुझको घर गंदा करके रख दिए तू ऐसे करती है तू ऐसे करती है ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसका मतलब सर्वभूतानाम नहीं है अभी वो व्यक्ति वो सिर्फ सीनियर डिवोटी। सीनियर डिवोटी मतलब समुद्र के पास रहने वाला सीनियर डिवोटी। तो सीनियर डिवोटी जो है तो उसके प्रति उसकी बड़ी शरणागति है दंडवत करता है और बाकियों के प्रति उसका द्वेष है चाहे वो पत्नी हो। अगर वो पत्नी पति की सेवा कर रही है और आप जप कर पा रहे हो मंदिर जा पा रहे हो तो उसके लिए कृतार्थ होना चाहिए उस पत्नी का धन्यवाद कि तुम्हारे कारण मैं भक्तों के पास जा पाता हूँ कथा सुन पाता हूँ। लड़ने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। सर्वभूता नाम में भगवान का दर्शन जो करेगा वो व्यक्ति भगवान को पसंद है। और मैत्रे मैत्रे मतलब मित्रता पूर्वक लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। करुणा अब जो व्यक्ति द्वेष रहित होगा और सबसे मैत्री रखेगा मित्रता का भाव रखेगा वो करुणामय होगा दयालु होगा और बड़ा ही दयालु होगा सभी के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे और कल का दिन जो है 23 सितंबर 1965 श्रील प्रभुपाद जी बोस्टन हार्बर पहुंचते हैं। प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर के अमेरिका गए इस सभी जानते हैं इस चर्चा को। लेकिन हैरान करने वाली बात क्या है कि प्रभुपाद जी जब 1972 में वापस हिंदुस्तान आए और वहां से वो छिप्पीवाड़ा मंदिर के लिए टैक्सी लेते हैं तो वो 40 रुपए उनकी पॉकेट में एज इट इज थे। ये मालूम है आपको एज इट इज थे खर्च नहीं किया। लोग सोचते 40 रुपए से उन्होंने इस्कॉन बनाया वो ये जानते नहीं 40 रुपए भी वापिस आ गए थे $5 उस समय में $5 40 रुपए होता था वापिस। अब देखिए इसका मतलब जीरो रुपीज में उन्होंने इतना बड़ा एक मूवमेंट खड़ा किया 1972 में प्रभुपाद जी जब वापिस आए। सोचिए आप तो जब प्रभुपाद जी जब गए तो प्रभुपाद जी ऐसे करुणामय थे कि एक दिन श्रील प्रभुपाद जी ने एक स्थान था जिसको कहते थे मैचलेस गिफ्ट आपने सुना है मैचलेस गिफ्ट और एक पुस्तक भी है एक अनुपम उपहार अनुपम भेंट कृष्ण भावना वृत्ति का अनुपम उपहार। तो प्रभुपाद जी के जो भक्त थे जिनका नाम बाद में कीर्तनंद महाराज पड़ा पहले उनका विदेशी नाम कीत था तो वो जो कीत थे और कुछ भक्त थे मिलकर उन्होंने वो मैचलेस स्टोर को किराए पे लिया और कहा श्रील प्रभुपाद आप यहां अपना प्रवचन भगवद गीता शुरू कर सकते हैं संध्या में। तो वहां सारे हिप्पीज रहते थे सारे हिप्पीज और उस स्थान में शराब पीकर एक दूसरे के ऊपर लेटे रहते थे और बहुत ही गंदे तरीके से वो कार्य करते थे। तो प्रभुपाद जी ने एक दिन मैचलेस गिफ्ट, उसका नाम पहले भी मैचलेस गिफ्ट था, लेकिन प्रभुपाद जी ने उस शॉप का नाम चेंज नहीं करवाया, कहा इसको एज इट इज रहने दो मैचलेस गिफ्ट, क्योंकि जो मैं यहाँ देने वाला हूँ वो कैसा गिफ्ट होगा, मैचलेस गिफ्ट, किसी से वो मैच ही नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम सही है। फिर अंदर एक फोटोग्राफ लगाया और फिर प्रभुपाद जी ने अपने ट्रंक को, जिस ट्रंक को लेकर प्रभुपाद जी गए थे, ट्रंक समझते हैं ना, बक्सा, उस बक्से के ऊपर उसमें से एक कंबल निकाला, उस कंबल के ऊपर ऑल्टर बनाया, वहीं प्रभुपाद जी नीचे कंबल में सोते थे। अब करुणा जो है, भक्त की करुणा कैसी होती है वो आप वृतांत सुनिए। प्रभुपाद जी ने एक दिन प्रवचन देना शुरू किया, तो प्रभुपाद जी ये नहीं देखते थे आज कितने भक्त हैं, वजह से हमारी भी अभी चर्चा हो रही थी प्रभु जी से, वहीं से सीखा है मैंने, प्रभुपाद जी ये नहीं देखते थे कितने भक्त हैं। प्रभुपाद जी कहते थे मैं अपने गुरु के लिए प्रचार कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, एक होगा तब भी उतनी शक्ति से प्रचार करूंगा, 100 होंगे तब भी, 1000 होंगे तब भी, 10,000 होंगे तब भी, शक्ति में कोई भेद नहीं आना चाहिए, हाँ, क्योंकि मैं अपने गुरु के लिए कर रहा हूं, अपने लिए करूंगा तो अपनी ब्रांडिंग में कमी दिखाई देगी मुझको, बाहर खेलने के लिए बोल दीजिए ना इनको। तो इस प्रकार से अब प्रभुपाद जी ने वहां पर भगवद गीता का प्रवचन देना शुरू किया, और इतना सुंदर प्रवचन देते थे प्रभुपाद, लोग आते थे, और वो कीर्तन में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो कि वो बजाना जानते हो आप सोचे कि मैं बोलने वाला बजाना, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो बजाना जानते हो, मतलब कुछ नहीं जानते थे वो। हारमोनियम अगर आप देखेंगे पुराना वीडियो, तो उसमें हारमोनियम एक हाथ से नहीं बजा रहा है, और एक हाथ कीज पे होना चाहिए, उस व्यक्ति का दोनों हाथ इधर है, इधर मतलब बजा ही नहीं रहा वो, और लगा पड़ा है वो कीर्तन में। मृदंग वाला एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे नहीं कर रहा है, उल्टा करके मृदंग को तबले की तरह ऐसे बजा रहा है, मतलब नहीं था, टेबल कुर्सी बजा रहे हैं, प्लेट बजा रहे हैं, प्रभुपाद जी की सेवा करते थे। और एक दिन जब प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे, तो ऑब्वियसली फिलॉसफी इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, प्रसाद इज इजी टू डाइजेस्ट, इसीलिए इस कौन में प्रसाद कॉन्शियस भक्त तो मिलेंगे, पर कृष्णा कॉन्शियस शायद ही मिलेंगे, तो प्रसाद कॉन्शियस के लिए उन्होंने प्रसाद के लिए अब प्रसाद बनाते थे प्रभुपाद। अब प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का प्रवचन जैसे ही शुरू किया, दो तीन दिन के बाद एक दिन प्रभुपाद जी ने आंख बंद करी, और जब खोली तो कोई भी नहीं था, तो प्रभुपाद जी ने कहा आज कोई भी भक्त नहीं आया, कुछ दिन से कोई चार आते थे, कभी तीन आते थे, दो आते थे, आज कोई भी नहीं आया। तो कीथ ने कहा प्रभुपाद स्वामी जी लगता है आज प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, कोई भी नहीं आया। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, प्रोग्राम कभी कैंसिल नहीं होगा, जाओ और जो बाहर मैचलेस गिफ्ट शॉप के बाहर जो लोग हिप्पीज हैं उन्हें उठा के लाओ। तो बाहर गया तो उन्होंने देखा कि लोग नशे में एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके, और वहीं पर उन्होंने मल मूत्र त्याग किया हुआ था, और ऐसी स्थिति में वो पड़े हुए थे नशे में। उन्होंने आकर कहा कि इतने प्रभुपाद कोई भी इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो कि प्रवचन सुन सके। तो प्रवीत शैल प्रभुपाद जी ने कहा आप जाइए कीर्त, और उनको घसीट के मंदिर के अंदर, मतलब इस शॉप के अंदर, इस स्थान में लेके आइए। तो कीर्त गए और फिर उन्होंने कई एक व्यक्ति को रोड पे से बुलाया और कहा प्लीज हेल्प करो, ये हमारे ही लोग हैं जो बाहर लेटे हुए हैं। तो उस व्यक्ति ने अनजाने में उनकी मदद करी और 6-7 लोगों को अंदर लाया गया, फिर भी वो उठे नहीं थे, लेटे हुए थे। और प्रभुपाद जी ने कहा कि अब मैं प्रवचन शुरू करता हूँ। प्रभुपाद जी ने ओम अज्ञान तिमिरंधस्य शुरू किया। तो कीर्त ने कहा प्रभुपाद आप किसको सुनाने वाले हैं, ये सुनने को तैयार नहीं है। प्रभुपाद ने कहा ये सुनने को तैयार नहीं है, पर इनकी आत्मा सुनने के लिए तैयार है। इनकी चेतना घूम हो चुकी है, लेकिन इनकी आत्मा वैसी की वैसी है। आत्मा न कभी सोती है, न कभी जगती है, न मरती है, न कटती है, आत्मा तो सुनेगी, और मैं इनकी आत्मा को सुना रहा हूं, और एक ना एक दिन देखना इनमें बदलाव आएगा। और फिर प्रभुपाद जी ने खिचड़ी प्रसाद बनाया और कहा फीस्ट करो। पर कौन खाएगा प्रभुपाद, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए खाने की स्थिति में क्या? प्रभुपाद जी ने कहा प्रसाद इनकी आत्मा की चेतना को बदलेगा, खिलाओ, इनकी कॉन्शियसनेस को बदलना है तो कैसे खिलाओ, मुंह खोलो और सबके मुंह में थोड़ी थोड़ी खिचड़ी डालो, और अनजाने वो ये चबा रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं क्या खिलाया जा रहा है, और वो प्रसाद अंदर जा रहा है। और उसके कुछ दिनों बाद वो ठीक नहा धो के आने लग गए, और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा स्वामी जी कैन वी सर्व यू, क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम बोलो सेवा के लिए। तो रोज प्रभुपाद जी उनको प्रसाद बनाते थे, खिलाते थे और उसके बर्तन को खुद धोते थे। ये होती करुणा। हम हैं तैयार, है तैयार, फिर भक्त कहाँ से आएंगे? बोले प्रभु जी आजकल कॉन्ग्रीगेशन में डिवोटी नहीं है, प्रेम कहाँ है भक्त में? अपनी साधना में इतना व्यस्त है व्यक्ति, अपनी रीडिंग में, अपने ज्ञान में, अपने ज्ञानी बनने के अहंकार में, कि उसके पास समय नहीं है परिवार के लोगों को देखने के लिए और अपने आध्यात्मिक परिवार को बढ़ाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। अब प्रभुपाद जी ने कहा कोशिश तो करें, इतनी सारी आत्मा घूम रही है हमारे आसपास, और अगर हम गाते हैं ये संसार दावा नल नीड लोका है, संसार में अग्नि लगी हुई है और एकमात्र रास्ता है क्या? हरे रे नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और फिर आगे कहते हैं निर्ममो निर्मम, स्वामित्व की भावना से रहित होकर, स्वामी की भावना नहीं होनी चाहिए। चार साल पांच साल हो गए किसी को अगर मंदिर आते हुए और वो कहता है कि अब जो सेक्टर 23 की क्लास है ना कम्युनिटी सेंटर हमारे लेवल की नहीं है अगर ऐसा किसी में भाव है तो उस स्वामित्व की भावना से वो व्यक्ति दूषित हो रहा है। अगर खाली हरे कृष्णा भी सुनने को मिले तब भी आना चाहिए, कृष्ण का नाम सुनने को मिल रहा है, कृष्ण के दर्शन करने को मिल रहे हैं तब भी आना चाहिए। आप सोचिए जरा, ऐसे ही कृष्ण किसी को प्राप्त नहीं हो जाते, कई कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे करने के बाद भगवान कहते हैं कोई भाग्यशाली जीव आत्मा क्या करती है, कृष्ण के नामों का जप कर पाती, भाग्यशाली। तो यहाँ जो बैठे हैं ये अपनी किस्मत को अगर कभी सोचे मेरी कैसी किस्मत है, क्या नौकरी है, क्या परिवार है, तो उसको फिर पलट कर सोचना चाहिए मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे जीते जी इसी शरीर में रहते रहते मुझे क्या प्राप्त हो गया है, हरिनाम प्राप्त हो गया। तो वो स्वामित्व की भावना से रहित और निरहंकार अहंकार से रहित। तो अहंकार दो प्रकार का होता है, एक मिथ्या अहंकार और एक क्या है अहंकार। मिथ्या अहंकार में व्यक्ति को लगता है मैं ये शरीर हूं, क्या हूं? शरीर हूं। और इस शरीर के संबंधों को बनाने में वो कृष्ण संबंध को भूलने के लिए तैयार बैठा रहता है। कृष्ण के संबंध को बनाने के लिए टाइम नहीं है और अपने परिवार के संबंधों में वो क्या करता है, जुड़ा रहता है बहुत ही ज्यादा। और इसीलिए उसके जीवन में जब तक वो इस शरीर से जुड़ा रहेगा सुख और दुख आते रहेंगे, सुख और दुख आते रहेंगे। आप सब लोग सुखी हैं या दुखी हैं? सुखी हैं। कितने लोग सुखी हैं हाथ खड़ा करिए। सुखी हैं, बहुत बढ़िया। कितने लोग दुखी हैं हाथ खड़ा करिए। कुछ लोग हैं ना सुखी हैं ना दुखी हैं, न्यूट्रल है। तो आप देखें तो आज आपको एक गुह्यतम बात बताते हैं, वैसे आपको जानते भी होंगे भक्त, दुख का कारण क्या है। हाँ? क्या कारण है दुख बताएगा कोई? हाँ यस प्रभु जी, कृष्ण का भूलना ही दुख का कारण है। वेरी नाइस। और कोई माता जी हमारी ज्ञानी भक्त? हाँ, अनलिमिटेड डिजायर्स, यस बहुत बढ़िया, अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, और हाँ जी अज्ञानता, बहुत बढ़िया अज्ञानता। और प्रभु जी कोई माताएं आगे निकल गई हैं, ब्रोंज मेडल भी वही लाई ओलंपिक में, प्रभु जी पीछे रह रहे हैं तो ठीक है। दुख का कारण है सुख की अभिलाषा। क्या है कारण दुख का? सुख की अभिलाषा ही दुख का कारण है, आशा ही निराशा है। सुख की अभिलाषा, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए 21,000 रुपए का, ये 800 रुपए का फोन चलाते चलाते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मुझे नहीं चाहिए 1500 रुपए का फोन, मुझे चाहिए क्या? स्मार्टफोन, क्योंकि मेरी बुद्धि हो गई है डल और मुझे चाहिए स्मार्टफोन स्मार्टफोन चाहिए डल माइंड के लिए। वो स्मार्टफोन से बात करते हुए जा रहे हैं, सुख की अभिलाषा है। और अब चलूंगा तो मुझे हर जगह लोग देखेंगे कि पहले मैं फोन को यूं पकड़ता था, अभी मैं यूं पकड़ता हूं, और कई लोग तो यूं भी पकड़ते हैं। तो उस फोन को वो जब पकड़ रहे हैं और इतने में किसी ने आवाज लगाई हरि बोल और वो छूट गया हाथ से, तो फिर क्या होगा? सीधा कितने का नुकसान? 21,000 का नुकसान, 25,000 का नुकसान। और फिर ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या सोचता है, अगर 800 वाला होता ना, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, तो सुख की अभिलाषा ही दुख का कारण है। यही सच्चाई है, सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए, इसीलिए दुख हमें मिलते हैं। और अगर देखें तो इस संसार के लोगों के साथ में जो हम रिश्तेदारी बनाने में सुख की अभिलाषा सोचते हैं कि प्रभु जी अगर हम मंदिर में जुड़ गए तो क्या अब हम नहीं जा सकते अपने रिश्तेदारों की शादी में, बर्थडे में, उसमें जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो कहते हैं काम और प्रेम ये दो प्रकार के शब्द हैं। भगवान के साथ हमारा क्या होता है? प्रेम। और संसार के साथ क्या होता है? काम। अब काम शब्द जो है ये कुछ दूषित लोगों ने काम को काम वासना ही समझकर छोड़ दिया है, लेकिन काम काम वासना नहीं है, काम इच्छाएं हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बताते हैं काम प्रेम दोहकार विभिन्न लक्षण, लोह और हेम ये छे स्वरूप विलक्षण। काम प्रेम दोहकार, काम और प्रेम दो प्रकार की चीजें हैं, दोहकार विभिन्न लक्षण, और दोनों के लक्षण भी विभिन्न है। लोह और हेम याचे, ये जैसे लोहा होता है और एक सोना होता है, तो दोनों के लक्षण अलग अलग। अगर आपको घर के अंदर खिड़की बनवानी हो तो किसकी बनवाएंगे? लोहे की। कोई सोने की बनवाना तो नहीं चाहता है। और अगर आपको अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पे या आपके शादी के सालगिरह एनिवर्सरी पे कुछ देना हो तो कभी लोहे का चेन तो नहीं देते हैं? क्या देते हैं आजकल? कुछ है वो गोल्ड प्लेटिंग करके भी दे देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सोने का दिया। तो एक चीज का इस्तेमाल एक ही चीज जगह कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते। अभी कोई व्यक्ति बोले मैंने तो क्या किया है, लव मैरिज किया है। क्या किया है? ये शब्द ही गलत है। लव मैरिज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैरिज मटेरियल है और लव स्पिरिचुअल है। सोना और लोहा एक चीज नहीं हो सकती ना, दोनों अलग अलग बताया आप, लक्षण अलग हैं, उसके इस्तेमाल अलग हैं, तो फिर लव मैरिज कैसे हो गया? मैरिज तो मटेरियल है और लव भगवान के लिए, तो फिर क्या हुआ यहां पे? लस्ट मैरिज, प्रेम विवाह नहीं हुआ, काम विवाह हो गया। और ये काम विवाह तब तक चलता है जब तक मेरी इच्छा पूरी होती है, उसके बाद स्टॉप। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में जब मैंने पढ़ा तो मैं घबरा गया पढ़ करके, आप भी घबराएंगे, आपने शायद कभी इतनी सूक्ष्मता से नहीं पढ़ा हो। तो उसमें वर्णन आता है कि क्या चीजें काम के अंदर आती हैं। हम तो सोचते हैं स्त्री का संग करना काम, और उसके अलावा अगर ये नहीं करता हूं मैं पक्का शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण, मेरी कोई इंद्रिय इच्छा नहीं है। अभी आप सुनेंगे तो आप अच्छा लगेगा सुन के, चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में वर्णन है, आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा तार बले काम, कृष्णेन्द्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों की प्रीति की वांछा अगर है, इच्छा अगर है, तो क्या बोलेंगे? तार बोले काम, उसको काम कहा जाता है। फिर इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमारे जैसे कलयुग के जीवों के लिए और भी सरलता से वर्णन किया है कौन सी चीजें आत्म इंद्रियों के अंदर आती हैं, प्रीति वांछा में आती हैं। आप बोल सकते हैं मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है, तो इसमें अब एक लिस्ट दी गई है, सूची पूरी, कौन सी चीजें आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा में आती हैं। लोकप्रियता, तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो क्या चाहते हैं? लोकप्रियता। तो ये किसमें आ गया? तो हम बोल सकते हैं कि हमारा नेता कामी है या कामुक है क्योंकि उसकी आत्म इंद्रिय की इच्छा है। दूसरा राष्ट्रीयता, स्पष्ट लिखा है राष्ट्रीयता, अगर कोई राष्ट्र के लिए कहना चाहता है मैं राष्ट्रभक्त हूं, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसका खंडन किया, राष्ट्रभक्त मिलके क्या मिलेगा? एक ना एक दिन सरकार बदल जाने वाली है और जो सरकार आएगी वो अपनी इच्छा से तुम्हें अपना नौकर बना के रखेगी। अगर सच्ची आजादी चाहते हो तो इस शरीर के जन्म मृत्यु चक्र से आजादी पाओ, अपनी इंद्रियों और अपनी अभिलाषाओं से आजादी पाओ, और वो आजादी कैसे मिलेगी? भक्ति करने से। आगे कहा यहां तक कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, मेडिकल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य रक्षा। अरे प्रभु जी, ये मेडिकल इंश्योरेंस ना कराएं। मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, लेकिन स्वास्थ्य रक्षा की अभिलाषा। समझ रहे हैं आप कि अगर किसी को डेंगू हो गया तो मैंने माला छोड़ दी, क्यों? क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस से मैं बीमारी ठीक करवा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो क्या मेडिकल इंश्योरेंस करेगा, क्या दवाई करेगी, क्या पैरासीटामोल करेगा? इसका मतलब यह भी नहीं कि हम दवाई ना दिलवाएं, एडमिट करा दें हॉस्पिटल में, अपना कर्तव्य निभाएं, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर दिया, एडमिट करा दिया, उसके बाद क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। इस संसार का कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकता मैंने दवाई दी है इसका रिजल्ट आएगा। हाँ, तो स्वास्थ्य रक्षा करना भी इंद्रिय तृप्ति है। मतलब हम जब छोड़ करके स्वास्थ्य रक्षा करें, सेवा करें घर परिवार वालों की, रिश्तेदारों की, नेबर्स की, रिलेटिव्स की, वैष्णवों की, लेकिन साधना को त्याग करके कदापि नहीं। एक बार नरसिंह मेहता नाम के एक भक्त हुए गुजरात में, वैसे तो उनका नाम था नरसिंह राम मेहता, नरसिंह राम, भगवान नरसिंह के दास नरसिंह राम दास मेहता थे, लेकिन बाद में वो शॉर्ट फॉर्म में बन गया नरसिंह मेहता। सुना है आपने, कितने लोगों ने सुना है नरसिंह मेहता? कुछ ही लोगों ने सुना है। नरसिंह मेहता एक ऐसे भक्त थे जो बचपन से कभी बोल ही नहीं पाए, 5 साल की अवस्था तक गूंगे और बहरे थे। तो उनकी दादी बड़ी परेशान थी, तो आप कहेंगे दादी का नाम क्यों लिया, माँ बाप किधर गए? उनके माता और पिता ने बहुत ही कम उम्र में अपने प्राणों को त्याग दिया और चले गए। तो ये जो बच्चा था नरसिंह राम मेहता, ये बेचारा अकेला था और ये सदा ही अब बोलता नहीं था। तो उनकी दादी ने सोचा कि अगर मैं मर गई तो इसको खाना कौन देगा और ये तो गूंगा बहरा है। तो अपने एक संत के पास गई, जैसे हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, संतों के पास जाकर के आशीर्वाद मांगते हैं। उन्होंने कहा, महाराज कृपा करिए, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, मेरे बच्चे पे कृपा करिए। उन्होंने कहा, क्या कृपा करनी है? कहा, इतनी कृपा कर दो कि ये बोल करके अपनी रोटी मांग के खा ले कि मैं भूखा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने जल लिया और बच्चे के सिर पे और कान पे और मुंह पे नाक पे सब जगह फेंक दिया, पवित्र यज्ञ जल था, और गोदी में बिठाया बच्चे को और कहा, बेटा बोलो राधे श्याम। क्या बोलो बेटा? राधे श्याम। इतना ही बोलने को बोला और वो बच्चा निरंतर 24 घंटे बस एक ही जप करता रहता था। क्या? राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। उसने पहला वाक्य वही सुना, 5 साल की उम्र तक उसने कोई कार्टून सीरियल नहीं देखा था, डोरेमोन कुछ नहीं देखा उसने, उसने बस एक ही चीज सुनी, पहला शब्द राधे श्याम। वो बहुत ही उसकी ऐसी अवस्था आ गई, भजन में उनकी रुचि, और उन्होंने कहा ये कोई छोटा मोटा भक्त नहीं है, एक ऐसा भक्त बनेगा जिसके कारण कई लोग राधे श्याम भजन गाएंगे, कई लोग हरे कृष्ण करेंगे, कई लोग राधे कृष्ण करेंगे। अच्छा, और दादी चल बसी। और फिर उसके एक बड़े भाई थे, और बड़े भाई की एक पत्नी थी, तो वो भी उनके साथ में बड़ा दुर्व्यवहार करती थी, उसका नाम था दुरित गौरी। बड़ी दुरित थी, बड़ी ऐसी कि बस घर में कहती खाने को तेरे पास इतना है और कमाने के लिए कुछ नहीं, जैसे जड़ भरत की कथा में सुनते हैं हम। अब बहुत ही दुर्व्यवहार होता था और ये बेचारे भगवान का अब भजन करते रहते थे। तो अब इनका विवाह हुआ और लंबी कथा है, उसमें हम नहीं जाएंगे, तो इसका हम जल्दी से इसका एक इसमें जो समझना चाहते हैं वो समझेंगे। उनके पुत्र पुत्री हुए और उनकी पत्नी थी, पत्नी का देहांत हो गया बाद में, और पुत्री जो है उसका विवाह हो गया, और इनका पुत्र श्यामल, श्यामल साहा, वो बहुत ही यंग था, बहुत छोटा बच्चा था, वो युवा 15-16 साल का। किसी ने आकर उनको खबर दी कि नरसिंह जी वो हमेशा कीर्तन में मगन रहते थे, बेटी की शादी हो रही है वो कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हमेशा कीर्तन में बिजी, जप साधन ऐसे ही वो कीर्तन कर रहे थे। किसी ने आकर खबर दी
कहा महाराज जी जल्दी बाहर आइए बाहर आइए, क्या हुआ?
नरसिंह जी आपका जो युवा बेटा था श्यामल साहा वो गुजर गया, अभी पुत्र पिता के सामने चला जाए तो बड़ी दुखद स्थिति। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा अच्छा गुजर गया, चलिए फिर आप लोग क्रियाकर्म का इंतजाम करिए, आप लोग क्रियाकर्म का इंतजाम कीजिए। और अपने कुर्ते में से दो करताल निकाली और बोले जब तक आप लोग क्रियाकर्म का तैयारी कर रहे हैं मैं थोड़ा कीर्तन कर लेता हूँ। और क्या गाया? भला भया छूटा जंजाल भजनो गोपाल भजन गोपाल। तो बोले क्या? भला भया छूटा जंजाल सुखनो भजना श्री गोपाल। श्री गोपाल जी का भजन गाया उन्होंने। किसके कारण हुआ ये सब कुछ? इस शक्ति देने वाले भी भगवान है, लेने वाले भी भगवान है। ये श्रेष्ठता जिस दिन आ जाए वो व्यक्ति भक्त है। हमें तो लगता है जो लंबा तिलक लगाता है वो भक्त है, या फिर जैसे कुर्ते का कलर बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं है। भक्त वो है जिसका भगवान पे पूरा विश्वास। तो यहां पर यहां तक की बताया इस चैतन्य चरिता में इतने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, धर्म आचरण करने वाला व्यक्ति भी आत्म इंद्रिया वांछा वाला है। धर्म आचरण, धर्म आचरण मतलब अपने धर्म का दिखावा। मंदिरों में कथा हो रही है, अब व्यास जो है कथा व्यास 11 लाख रुपए ले रहा है, और इस्कॉन केंद्र में हुई स्टॉप कैलाश में, और लोगों ने दिए 11 लाख रुपए, 11 लाख अरेंजमेंट के अलग, 11 लाख रुपए कथा। और वो क्या है जो व्यक्ति दे रहा है पैसा, वो क्या दिखा रहा है? मैं बड़ा धार्मिक हूँ, तो धर्म का आचरण कर रहा है, अपने रिश्तेदारों को बुला के कथा सुनवा रहा है। तो ऐसे धर्म आचरण वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? आत्मिंद्रिया प्रीति वांछा तार बले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रिय की प्रीति वांछा कौन कर रहा है संसार में? हम भोग भी लगा रहे हैं भगवान को, तो इसलिए लगा रहे हैं कि मेरा पाप रहित हो जाए भोजन, इसलिए थोड़ी लगा रहे हैं। गोपाल जी आज आपके लिए क्या बनाऊं मैं है? और ऐसा भक्त जो होगा ना सही मायने में, वो व्यक्ति के साथ भगवान का संबंध बहुत अनोखा होता है। भगवान उतर आते हैं उस व्यक्ति की सेवा करने के लिए। भगवान आसानी से सब कुछ दे देते हैं, बस एक चीज नहीं देते। क्या क्या चीज नहीं देते आसानी से? क्यों नहीं देते? भक्ति, पता है बिजी है मोबाइल में। भक्ति क्यों नहीं देते भगवान? बस इसलिए, पैसे तो नहीं है, हम भी आश्रय नहीं बनाए, प्रोग्राम न करें, भक्त की रक्षा करनी पड़ती है। भगवान इसलिए नहीं करते कि भक्त को भक्ति देने के बाद भगवान उसके ऊपर क्या हो जाते हैं? आश्रित हो जाते हैं। वो भगवान की रक्षा करे ना करे, भक्त को भगवान कहते भैया छोड़ दे मुझको, और भक्त को भगवान को भक्त पकड़ लेता है। कहते हैं या नंद बाबा जाओ कृष्ण मेरी जूता उठा के लाओ, मुझे जाना है कंस से मिलने, ऋण चुकाने के लिए, कर चुकाने। हाँ बाबा लाया लाया, चप्पल सर पे लगे। अर्जुन कह रहा है चलो कृष्ण उठाओ अपना रथ और ले चलो युद्ध क्षेत्र में। तो लो भैया युद्ध क्षेत्र में, रक्षा थोड़ी चाहिए, नौकर बना लेते हैं मुझको अपना और उनके ऊपर आश्रित हो जाता हूं। वो बोले तो खाऊं, वो बोले तो पीऊं। विग्रह के रूप में सबने इस्कॉन में 700 केंद्रों में भगवान को बंदी बना रखा है। जब पुजारी जी खिलाएंगे तभी तो खाएंगे भगवान, वे आश्रित हो गए। इसलिए भक्ति नहीं देते, भक्ति दे रही तो मैं इनका आश्रित हो जाऊंगा। अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूं। भागवत में बोल रहे हैं भगवान, विशेष समझने वाली चीज है। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते। भगवान कहते हैं कि सही मायने में मैं भक्ति उसी को देता हूं जिसके अंदर क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है? और प्रेम कब होगा? जब हम अपनी इंद्रियों की, अपने संसार की रक्षाओं को, संसार के कार्यों को छोड़कर कृष्ण की प्रसन्नता के कार्यों को करेंगे। और कृष्ण की प्रसन्नता के कार्य कौन बताएगा? हमारी गुरु परंपरा के अथॉरिटीज, गुरुज बताएंगे क्या प्रसन्न करता है कृष्ण को। इसलिए यहाँ पर शास्त्र में वर्णन आता है, सर्वथा ध्वंस रहित सत्यापि ध्वंस कारणे यद भव बंधन यो न सा प्रेम परिकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि सर्वथा ध्वंस रहितम, जो सारे कारण प्रकट होने पर भी ध्वंस नहीं होता। कृष्ण तो चीर चुराते हैं गोपियों के, इतने इतने नीचा काम करते हैं, वो भगवान है कोई? छोड़ो छोड़ो, कहाँ लग गए तुम, चलो साईं बाबा, बाबा जी हैं उनकी करेंगे। तो ले भैया छोड़ दिया हमने, हाँ सही तो कह रहे हैं। तो ये प्रेम नहीं है। सर्वदा ध्वंस रहित, जो कभी ध्वंस ना हो, सत्यापि ध्वंस कारण है, और चाहे सच्चाई का कारण क्यों ना हो। पता है तुम्हारा बेटा क्यों मर गया, पता है तुम्हारे घर बीमारियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि तुम भजन करते हो। भगवान का नाम है हरि, वो अपने भक्त का सब कुछ छीन लेता है, और फिर भी मैं भक्ति कर रहा हूं, ये बात सुनने के बाद में, सत्यापि ध्वंस कारण है, ये सच्चाई सुनने के बाद भी, तब कहते हैं क्या भगवान, ऐसे भक्त को मैं अपने आप को प्रदान कर देता हूं। अरे उसके लिए परीक्षा बड़ी कठोर है, इतना आसान नहीं है। सारे कारण प्रकट होने पे भी ध्वंस के सत्य कारण भगवान का प्रेम ना छूटे। गोपियां भाग भाग के जाती हैं वृंदावन में, और उनको भगवान कहते हैं जाओ निर्लज्जा चली आई, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें तो गालियां देंगे, मुझे भी देंगे, रात्रि में बुलाता है। तो ऐसी स्थिति प्रकट होने पर भी गोपियां कहती हैं चाहे नरकों में जाना पड़े, चाहे इस गांव में हमको लोग निर्लज्जा के नाम से पुकारे, लेकिन फिर भी आज तो हम आपकी वेणु गीत सुनेंगे, आज तो हम आपका संग करेंगे। ऐसी स्थिति जिस भक्त की है, ध्वंस कारण प्रकट होने पर भी सत्य कारण वो कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती है। हमारे पास ऐसे कारण, हम तो थोड़ा सा चिकन गुनिया क्या है, मार्केट में डिवोटी गायब हो गए मंदिरों से, हाथ पांव तो टेढ़े हैं, जवान तो सीधी है, जोर जोर से बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, समा दुख सुख शमी, वो व्यक्ति जब निरंकार रहित होगा तो सुख और दुख में हमेशा समान रहेगा। संतुष्ट सततम योगी, और ऐसा व्यक्ति क्या होगा, संतुष्ट होगा, सेटिस्फाइड। जब भी मिलेंगे तो कैसा मिलेंगे, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना शोचते ना कांक्षते, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। हसमुख भक्त, प्रसन्नचित भक्त, ये सीरियस ऐसे मुंह लटका हुआ है, इसका मतलब ही अंदर से संतुष्ट नहीं है व्यक्ति। जो व्यक्ति संतुष्ट होगा, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, वो कैसा होगा, अरे उनका बेटा मर रहा है, वो कह रहे सुखनो भजना श्री गोपाल, भजन करो मजे में है, कहीं ना कहीं कुछ अटका हुआ है हमारे दिमाग में, इसी के कारण हमारा चेहरा का भाव भाव बदले हुए है। तो वही चीज जिस दिन हो जाएगी ना, ब्रह्म भूत जो आत्मा के स्तर पर आ जाएगा, वो प्रसन्न आत्मा बन जाएगा, और फिर ना सोचेगा ना कोई इच्छा करेगा, संतुष्ट सततम योगी। और सततम का मतलब क्या है, निरंतर। तो उसमें एक चेतन चरितामृत में मैं कुछ दिन पहले बोल रहा था, एक जगह पर बहुत ही सुंदर प्यार में वर्णन है। यहां पर भगवान हरिदास ठाकुर एक वेश्या को वर्णन कर रहे हैं, वेश्या को भक्त में बना रहे हैं। हम कभी किसी वेश्या को भक्त बना सकते हैं, तो ऐसी वेश्या को जिसका नाम था हीराबाई, हाँ जिसको रामचंद्र खान ने भेजा था, उसको उन्होंने भक्त बना दिया, और भक्त बनाने के बाद आदेश दे रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर उवाच जब आता है, तो हरिदास ठाकुर की शिक्षाओं में वो वेश्या को क्या शिक्षा देते हैं, जो यहाँ श्लोक में आया निरंतर सततम। तो वो कहते हैं निरंतर नाम लोई करो तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। साथ में बोलिए मेरे साथ, निरंतर नाम लोई करो तुलसी सेवन, अचिराते पावे तबे कृष्णेर चरण। तो दो कार्य करने को बोला उन्होंने खाली, अगर हम भक्ति में स्ट्रांग नहीं है, हम डगमगा रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, तो सारे कार्यों में से अपना दिमाग हटा करके ये दो कार्य करने हैं, सिर्फ दो कार्य। हरिदास ठाकुर ने कहा उस वेश्या से कि तुम सिर्फ ये दो कार्य करो, इन दो कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में जितने भी पाप तुमने किए वो नष्ट हो जाएंगे, और तुम एक शुद्ध भक्त के स्तर पर पहुंच जाओगे। सिर्फ दो कार्य, नॉट मच। वो दो कार्य क्या है, निरंतर नाम लई, एक तो निरंतर भगवान का नाम लो, सदा क्या बोलते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा करो तुलसी सेवन। तुलसी महारानी जैसा शुद्ध भक्त ना कोई है ना कोई होगा। कोई महाराज, कोई आचार्य, कोई परंपरा का गुरु तुलसी महारानी से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। सबसे सर्वश्रेष्ठ आचार्य शुद्ध भक्त कोई हमारे घर में हमारे पास है तो कौन है? तुलसी महाराज। उनकी सेवा, साक्षात भगवान की भक्त, उनकी रोपण, उनकी मंजरी की सेवा, उनके तुलसी चुनना, तुलसी भगवान को सेवा करना, जल चढ़ाना, सरल साधन करके व्यक्ति भगवान को, साध्य को प्राप्त कर सकता है। सिंपल दो चीजें हरिदास ठाकुर ने कहा और उस वेश्या ने इन दो इंस्ट्रक्शंस को ऐसा पालन किया। दूर दूर से संत महात्मा दर्शन करने आते थे। किसका? हाँ, हीरा भाई नहीं थी अब वो, अब तो वो थी वैष्णवी लक्ष्य हीरा। वैष्णवी बन गई थी, क्यों? क्योंकि वो रोज 1,00,000 भगवान के नामों का जप करती थी। 1,00,000, हम कितना करते हैं? 1728। 16 मालाओं में 1728 बार भगवान का नाम आता है, वो कितना करती थी? 1,00,000 बार। तो आप सोच के देखिए क्या स्थिति है हमारी उनकी। तो अगर हम 1,00,000 बार भगवान के नामों को निरंतर जप कर सकते हैं, जरूर नहीं है हर समय माला लेके जाए, ड्राइविंग करते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तब भी भगवान का स्मरण रहे, निरंतर नाम ले, अगर निरंतर नाम ले सके और तुलसी सेवा कर ली, बस बहुत बड़ा, हमें कोई कार्य नहीं करना, हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उस वैष्णवी के दर्शन करने सब दूर दूर से आते थे और उन्होंने कहा कि वैष्णवी लक्ष्य हीरा, तुम कभी साधु निंदा मत करना, साधु निंदा मत करना। हमारे 10 नाम अपराधों में पहला अपराध है और उन्होंने 10 नाम अपराध ना बता के बस एक ही अपराध के बारे में वर्णन किया, क्या? साधु निंदा कभी मत करना। तो उन्होंने कहा कि साधु निंदा करते नहीं है महाराज, हो जाती है। करते नहीं है, दो भक्त मिलेंगे तो तीसरे भक्त की निंदा करेंगे ना, ये तो गुण है, ह्यूमन मेंटेलिटी है। भक्त का तो चोला पहना है, वेश धारण किया है, हृदय में तो कलमश भरा है, शुद्धिकरण का प्रोसीजर चालू है, पर कफ निकलते निकलते निकलेगा, बेनाड्रिल ले रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम ये है, निकले कैसे? साधु निंदा का निराकरण क्या है, कैसे जाए ये वैष्णव निंदा? तो उन्होंने कहा हरिदास ठाकुर ने, वैष्णव निंदा समाप्त करना चाहते हो तो वैष्णव प्रशंसा शुरू करो। कांटा अगर पैर में लगता है तो कैसे निकाला जाता है? कांटे से ही निकाला जाता है। साधु निंदा का अगर दोष अगर दिखता है तो साधु प्रशंसा करो, दूसरे व्यक्ति के अंदर गुण ढूंढो। एक व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण में कितने गुण है? कितने गुण है माता? एक भगवान श्री कृष्ण में अकेले में कितने गुण है? 16। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए ना, कितने? 64। 64 गुण है भगवान में, रस राज श्री कृष्ण 64 गुण, रस से भरे हुए, रस के सागर, रस राज श्री कृष्ण। और उस 64 गुणों में से जब भगवान अपने अंश रूप में इस सृष्टि में आत्माओं को प्रकट करते हैं तो एक गुण तो देते होंगे ना, वरना प्रकट ही नहीं सकते, एक गुण तो होगा। तो हम उन 63 नॉन अवेलेबल गुणों को देखते हैं, वो एक अवेलेबल गुण को क्यों नहीं देख पाते? अगर जिस दिन देखेंगे तो साधु निंदा बंद होकर साधु प्रशंसा शुरू हो जाएगी। तो ये साधु प्रशंसा करने से, जैसे ही किसी भक्त के बारे में कुछ नेगेटिव आना शुरू हो तुरंत उसका गुण ढूंढो, कुछ तो होगा यार इसमें अच्छा। अब टाइम लगेगा, हमें दिखता नहीं है, इन देख लें तो मिल जाएगा हमको एक गुण, एक गुण तो होगा, चाहे कोई गुण हो ना हो एक गुण तो होता ही है। क्या? जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये सब भगवान के दास हैं, सब भगवान के अंश हैं, ये तो बताइए हमको। माम एव अंश जीव लोका जीव भूत सनातन, इस सारी प्रकृति में हारे के सारे जीव मेरे कौन हैं? अंश हैं। जिस दिन ऐसी श्रेष्ठता आ जाएगी, और मैं अर्पितम मना बुद्धि, अपना मन और बुद्धि किसको दे देंगे? ठाकुर जी को। जैसे गर्लफ्रेंड होती है ना, वो क्या करती है? सारा दिन रहती तो अपने परिवार के साथ है, लेकिन किसको स्मरण करती है? बॉयफ्रेंड को। प्रभुपाद जी बोलते थे उदाहरण को, प्रेमिका प्रेमी का चिंतन करती है अपने परिवार में रहते हुए, और इतनी सिंसियरली सावधाने वंदे मुई सावधाने, सावधान पूर्वक वंदना करती है कि पता ही ना चले कि किससे प्रेम करती है। हाँ, पूछने पर भी ना 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 ना, ये कहाँ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, गंदा, बिल्कुल हटा के। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति को छुपा करके आप डेवलप कर सकते हो। कोई नहीं रोक पाएगा आपको भगवान का भक्त बनने से। मई अर्पितम मनः बुद्धि, हाँ भगवान ने अर्जुन को कहा अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो और शरीर संसार की सेवा में लगा दो। ऑफिस में रहो, मन रहे थर्सडे की कक्षा में। क्या बोला था अब क्या बोलेंगे, पिछली बार क्या बोला था अब क्या बोलेंगे। मैं पिछली बार गया था तो क्या सुन के आया था, क्योंकि पेपर पेन तो लेके नहीं आया था, तो मुझे याद नहीं क्या बोला था। कलयुग की बुद्धि है, इस कान से सुना था, इस कान से बाहर चला गया था। इसीलिए संस्था भी बना दी है, इस कान में डालो, इस कान से बाहर, बस। इसीलिए बोलते हैं, अरे महाराज दो दिए दो कान, इसीलिए भगवान ने एक से सुनो एक से निकाल दो, वरना बर्डन बढ़ जाता है। अरे भैया एक जुबान दी है और दो कान दिए, इसलिए कि बोलो कम और सुनो ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए भगवान का श्रवण कथा कीर्तन सुनना चाहिए। तो एक भक्त की कथा सुनाकर समाप्त करेंगे, समय हो गया है। कि एक भक्त हुए हैं, वो भक्त क्या थे कि उन्होंने मुसीबत में भी, जैसा इसके तात्पर्य में लिखा है आप पढ़ेंगे इस श्लोक के, कोई भी व्यक्ति कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आने पर विचलित नहीं होता, कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता, चाहे कोई भी उसका शत्रु हो लेकिन वो उसे विचलित नहीं कर सकता। ये उसकी क्या होता है, दृढ़ संकल्प से उसे हटा नहीं सकता, ऐसा इसमें वर्णन है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आखिरी के 5-6 लाइनों में लिख रहे हैं इस श्लोक में कि जिसका दृढ़ संकल्प हो उसको कोई उसके रास्ते से हटा नहीं सकता। तो ऐसे ही एक बार एक भक्त थे, उनका नाम था भोला। क्या नाम था? भोला। यही भोला नाम ही अपने आप में अब भोला कैरेक्टर बता रहा है, उसका चरित्र बड़ा भोला था। अब भगवान ने रामचरितमानस में कहा, क्या कहते हैं भगवान, निर्जन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्जन जन सोई मोहि पावा, जो व्यक्ति सॉफ्ट हार्टेड होगा ना, जिसका हृदय कोमल होगा, सोई मोहि पावा, मुझे कपट छल छिद्र वाले जो लोग हैं ना, कपटी, वो नहीं पसंद, स्ट्रैटेजी लगाते रहते हैं, वो पसंद नहीं है। अब भगवान को ही उल्लू बनाकर अपने दुनिया का उल्लू सीधा करते हैं, वो व्यक्ति भगवान जानते हैं, परमात्मा रूप में हृदय में विराजमान। तो ऐसे जो भोला थे वे दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहते थे, और एक बार उनके घर में कुछ धन की कमी थी, तो उनके बेटों ने कहा कि पिताजी आप सदा ही रघुनाथ मंदिर जो हमारे गांव का है, श्री रामचंद्र जी को रघुनाथ कहते हैं, रघुनंदन श्री रघुनाथ, आप रघुनाथ मंदिर में जाकर के क्या करते हैं, भजन करते हैं, रात दिन राम कृष्ण आप भजन गाते हैं। अरे पिताजी आप हमारी बहन की शादी के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते। कहा क्या करूं मेरे पास धन नहीं है। कहा यहाँ के जो सेठ जी हैं हमारे गाँव के, उनसे हम धन ले लेते हैं और उनके धन को क्या करेंगे, धीरे धीरे काम धंधा करके चुका देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम आपके अभी जवान बेटे हैं। कैसे बेटे हैं? जवान हैं, काम करके चुका देंगे। पिता ने कहा ठीक है, और फिर उन्होंने दान लिया और बेटी का अच्छा सुंदर विवाह हुआ। और कुछ ही दिनों बाद काम धंधा करके वो लोग सेठ का पैसा चुकाने लगे। अब सेठ जी पैसा चुकाते चुकाते काफी दिन जब निकल गए, तो एक दिन भोला को बोले, भोला आज ये रसीद ले जा, ये रसीद ले जा, तूने जितना दिया है उसकी रसीद ले जा। तो उन्होंने रसीद पे लिखा इसका पूरा कर्ज और साथ में उसका ब्याज इंटरेस्ट चुकता हो गया लिखा, और कहा ये ले रसीद। अब जब भोला को वो रसीद दी तो भोला ने कहा देख ले भाई ठीक है पूरा हो गया। तो उसकी एक ही आदत थी भोला की, क्या बोलता था, जी मैं अनपढ़ गंवार, जो लिखा होगा ठीक ही लिखा होगा, रघुनाथ जी जाने, कौन जाने, राम जी जाने, रघुनाथ जी जाने, ऐसे बोल देता। तो उसने कहा अच्छा रघुनाथ जी जाने, ओ सेठ था, इंटेलिजेंट, कपट उसके मन में था। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्लोक के तात्पर्य में कि व्यक्ति को एकदम सॉफ्ट, एकदम सरल होना चाहिए, क्लियर हार्टेड, ट्रांसपेरेंट, ज्यादा लेफ्ट राइट करके हो सकता है कि जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर ले। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे, यू कैन बिकम अ GBC, इतना बड़ा वर्ड बोले, यू कैन बिकम अ गुरु, यू कैन बिकम अ टेम्पल प्रेसिडेंट, यू कैन बिकम एनीथिंग, बट कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट यू टिल द टाइम यू डोंट डेवलप लव फॉर कृष्णा. जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं है आप भगवान धाम नहीं जा सकते. तो इसलिए प्रेम कृष्ण का हमें प्राप्त करना. इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बैठे हैं उन स्थिति पे उनमें प्रेम नहीं है, वो प्रेम के साथ में सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें खाली उन पोजीशंस को नहीं देखना है, प्रेम करना सोचना है. पोजीशन मिले ना मिले वो अलग बात है. तो इस तरह से वो व्यक्ति रघुनाथ जी जाने जब उसने कहा तो सेठ जी का दिमाग घुमा, कहा क्यों नहीं इसका पैसा लूट लूं. कहा बोला पानी ला देगा जरा थोड़ा सा पानी पानी. हाँ सेठ जी गया पानी लाया. जब तक वो पानी लाया सेठ जी ने रसीद फाड़ी नहीं, उसको अलमारी में छुपा दिया और एक कच्चे कागज पे लिख दिया इसका अभी सारा कर्ज बाकी है और इसने आज हामी भरी है कि मैं आजीवन काल तक आपका कर्ज चुकाने को तैयार हूं. और अंगूठा लगवाया, कहा अब ये ले तेरा. उसमें कुछ रह गया था, इसने पूरा लिख दिया. मैंने कहा रघुनाथ जी जाने कह के ले गया. और अब थोड़े दिनों बाद उसके घर पहुंचा, कहा मेरा दान वापस दो, मेरा कर्ज वापस दो. और बोला अरे अभी तो उस दिन सारा कर्ज चुका दिया. बेटे भी बोले हमने सारा कर्ज चुका दिया. और बोला अच्छा ज्यादा बनता है, चल लोक अदालत में. तो लोक अदालत होती है गांव में, लोक अदालत ले गया और जज के सामने प्रेजेंट किया गया. इधर खड़ा हो गया भोला और इधर खड़ा हो गया सेठ. कहा भाई बताओ तुमने इससे कर्ज लिया था, चुकाया क्यों नहीं. कहा जी साहब सारा का सारा कर्ज चुका दिया लेकिन ये सेठ जी मानने को तैयार नहीं है. ने कहा अच्छा कोई सबूत है. कहा जी सबूत तो हाँ है, पर्ची दी. कहा इसमें तो लिखा है तुमने कोई कर्ज नहीं चुकाया. अच्छा झूठ बोलते हो. कह रहे रघुनाथ जी जाने, राम जी जाने क्या हो रहा है मेरे साथ में. अब बड़ा अब वो जज जो था वो थोड़ा बेचारा दयालु प्रकार का था. वो बोला तुम सीधे साधे तो लग रहे हो, कहीं फंस गए हो, चलो तुम्हें मोहलत देते हैं. तुम ये बताओ कि जब तुमने कर्ज लिया तो उस समय कोई तुम्हारे साथ था, कोई गवाह, हाँ कोई तुम्हारा साथी, तुम्हारा बेटा पुत्र कोई तो होगा. कहा जब मैंने लिया तब मैं था, सेठ जी थे और रघुनाथ जी होंगे, वो तो हर जगह रहते हैं, हमेशा रहते हैं. तो उसे लगा जज को कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति इसके साथ था. तो उसने कहा ठीक है अगर रघुनाथ जी तेरे साथ थे तो रघुनाथ जी को बुला लेते हैं. तो उनके नाम से एक समन निकाल दिया. कहा अपने चपरासी को समन लेके जाओ और गांव में ढूंढो रघुनाथ कहाँ है और उसे लेके आओ. अब समन लेकर चपरासी जो था, जो उनका जूनियर था जज का, वो पूरे गांव में घूमा और बोला रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं. एड्रेस तो होता नहीं गाँव में, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी कहाँ. और वो ढूंढते 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 उन्होंने कहा जी एक ही रघुनाथ जी है यहाँ पर, तो मंदिर में रहते हैं. तो उसे समझ में नहीं आया, चपरासी को कहा अच्छा रहते होंगे. तो मंदिर में गया, वहां पुजारी जी बैठे थे. पुजारी जी ने देखा समन पड़ा तो कहा कि अब राम जी की इच्छा से अगर ये आ ही गया है समन तो साइन कर देता हूँ. हाँ एक्सेप्ट किया. कहा जी जो भी आता है शादी का कार्ड लेकर पोशाक लेकर हम सब ले लेते हैं, अब ये भी ले लिया समन, रिजेक्ट क्या करें. और फिर जो पुजारी था वो सोचने लगा कि कैसे कैसे भक्त हैं, कोई भक्त पोशाक चढ़ाता है, कोई भक्त भोग लगाता है, कोई भक्त मुकुट चढ़ाता है और इस भक्त ने तो समन ही चढ़ा दिया भगवान को. और ठाकुर जी बड़ी लीला है आपकी, तो अब ठीक है अब आया है तो जाना तो पड़ेगा. और देखिए भक्त आपका बड़ा सरल है, बड़ा आपका नाम जप करता है. आपने कहा है कि तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में है, और तुम मेरा नाम लेगा तो मैं तेरे काम आऊंगा. मैं उसने इतना नाम जप किया है आपका, जब से उसकी बेटी का विवाह हुआ है रात दिन मंदिर की सेवा में नाम जप और कीर्तन में लगा रहता है. तो उन्होंने पुजारी ने अपनी रिक्वेस्ट करी और डेट आ गई जिस दिन वो होना था डिसीजन. तो वहां पर बुलाया गया, एक तरफ भोला और एक तरफ सेठ खड़ा था. ने कहा हाँ रघुनाथ आए. तो चपरासी बोला हाँ साइन तो कर लिया था, आएंगे बोला है. अब उसे क्या पता कि वो पुजारी था. अब इतनी देर में उन्होंने कहा आवाज लगाओ रघुनाथ हाजिर हो. तो उसने आवाज लगाई दरबान ने, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो. तीन बार बोला तो एक बुढ़ा व्यक्ति मंदिर के और जज के वो जो कोर्ट था उसके अंदर एंटर किया लोक अदालत में, और हाथ में लाठी ले रखी है, सर पर मुकुट नहीं की जगह पर क्या है वो, सर पर एक फटका बांधा हुआ है. और कहा हाँ जी मैं हूं रघुनाथ. जज ने कहा अच्छा आप बताइए इसके और इसके लेनदारी में कौन झूठ बोल रहा है. कहा ये सेठ झूठ बोल रहा है। क्यों? क्या बोला? आपका सारा का सारा कर्ज पहले ही चुका चुका है। कहा कोई सबूत है आपके पास? कहा हाँ, वो सबूत इनके पास है और इन्होंने अपने घर के दीवार में जो तीन अलमारियां उसके बीच वाली अलमारी में 32 नंबर की रसीद रखी हुई है। तो जज बोला यार एग्जैक्ट बता रहा है पूरा एड्रेस। दो लोगों को भेजा, जाओ सेठ को यहीं रोक के रखो। गए जाकर के खोला, रसीद थी और जज साइन भी था सेठ का। अब सेठ जी के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना हुआ, उनको बाइज्जत बरी किया गया भोला को। और भोला से पूछा गया कि भोला एक बात बताओ, ये कौन थे? चपरासी भी बोला ये वो तो नहीं था जिसने समन साइन किया था, ये कोई और था जो आया रघुनाथ की जगह पे, पर ये कौन था और जिसने एग्जैक्ट सबूत भी दे दिया, कौन था? उन्होंने कहा हरि बिना संकट कौन निवारे। बस एक चीज बोली, क्या कहा? हरि बिना संकट कौन निवारे। मेरा संकट हरि के बिना और कौन निवारण कर सकता है? हरि बिना संकट कौन निवारे, हरि के बिना और कोई नहीं जो संकट से निवारण कर सकता है। हाँ अच्छा, और फिर वो समझ गया। कहा अच्छा जो ये रघुनाथ है ये रहते कहाँ हैं? कहा जी ये जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहते हैं। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? कहा जहाँ रघुनाथ जी रहते मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा भाई, तो वो समझ नहीं पाया। कहा अच्छा मुझे लगता है ये मंदिर उन्होंने बनवाया होगा। कहा नहीं नहीं मंदिर नहीं बनवाया। कह रहा हाँ वैसे लग भी नहीं रही थी वेशभूषा से कि मंदिर बनवा सकता है और पुजारी भी नहीं लग रहा था। तो कौन था जो रघुनाथ मंदिर में रहता है और मंदिर भी नहीं बनवाया है, तुम भी वहीं रहते हो, क्या है ये पजल? ये क्या बता रहे हो पहेली जैसा? कहा कि वो और जिनके आगे दुनिया नतमस्तक होती है वही है रघुनाथ और कोई नहीं है। हरि बिना संकट कौन निवारे, हरि के बिना और कोई नहीं आ सकता। जज साहब तो एकदम पागल हो गए बात सुनकर के। कहा हाँ ये अगर ऐसे भगवान हैं तो ऐसे भगवान के लिए अब मैं सब कुछ अपना त्याग दूंगा। और दक्षिण भारत से छोड़ करके वृंदावन में पूरा जीवन बिताया उन्होंने, उन भक्त ने। हा? और फिर जब भी वो वृंदावन में घूमा करते थे तो वो कभी बैठते नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में प्रण लिया था क्या कि कभी बैठूंगा नहीं। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जगदीश जो थे वो खड़े होकर समझा रहे थे, गवाही दे रहे थे, ठाकुर जी खड़े और मैं बैठा था, मैंने इतना बड़ा वैष्णव अपराध किया, इतना बड़ा सेवा अपराध किया मैंने अपने जीवन में कि अब मैं अपने जीवन में कभी बैठूंगा नहीं। और उन्होंने कभी जीवन में बैठे नहीं और किसी मंदिर में भी नहीं गए। कहा कि मैं मंदिर में गया तो मैं मुंह क्या दिखाऊंगा कि ठाकुर जी को मैंने गवाह बनाया, ठाकुर जी को मैंने उनके मंदिर से अपने कोर्ट में बुलाया, जिसके कोर्ट में दुनिया जाती है उसको मैंने अपने कोर्ट में बुलाया, जिसकी गवाही दुनिया लेती है मैंने उसको गवाह बना करके आज बुलाया, जिसको जो सबका साक्षी है उसको मैंने साक्षी बनने पर मजबूर किया, और वो भक्तों की चरण धूली को अपने मस्तक पर लगाया करते थे। कहते थे मेरा तो इतना है ही नहीं कि मैं ठाकुर जी से मिल सकूं, मेरा संबंध तो भक्तों से ही है, और मंदिर के बाहर की चरण रज को अपने सर पे लगाते थे। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वही है जो कृष्ण प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत कहती है भक्त पदे धूली भक्त पदे जल, तीन भक्त मुक्त अवशेष तीन महाबल। तीन महाबल है, भक्त का बचा हुआ अवशेष, भक्त का बचा हुआ जल और भक्त का धूली चरण धूली। इसीलिए वो चरण धूली आप देखते हैं ना मंदिरों के बाहर गुरुद्वारे के बाहर सब जगह धूली लगाई जाती है। तो धूली इसीलिए है वैष्णवों की चरण रज को अपने मस्तक पे लगाने से शायद कभी ऐसी हो कि क्या हो, मने सदैव कृष्ण पदार विंदयो, ऐसा हो जाए कि मन सदा कृष्ण में रति मती हो जाए हमारी। तो उसके लिए कृष्ण प्रिया बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के ऊपर अटूट विश्वास करना पड़ेगा, इन सारी भावनाओं से रहित होना पड़ेगा, अन्यथा भूल जाइए भक्ति। इसको पढ़ेंगे अगर 13 से 20 तक श्लोकों को, इसमें भगवान लिखते हैं अगले श्लोक में कि यहां तक कि अगर आपके क्रियाकलापों से किसी को कष्ट पहुंचता है, ये नहीं बोला वैष्णव को कष्ट पहुंचता है, ये नहीं बोला कि कोई अपराध से कष्ट पहुंचता है। आपके क्रियाकलाप से अगर किसी को कष्ट पहुंचता है वो भक्त मुझको प्रिय नहीं है। पढ़िएगा अगले श्लोक में, तो फिर चर्चा करेंगे अगली बार। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।